वासुदेवाय। నమో భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయాముదీరయేత్ ప్రాయేష భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ భగవదీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. శ్రీమద్ భాగవతం స్కంద 10 అధ్యాయ 14 శ్లోక సంఖ్య 1 उसको उच्चारण करने के प्रयास करेंगे. नवमी इद्या ते अभ्रा वपुषे तदेत अंबराय गुंजा అవతంస పరిపృచ్ఛ లసత్ ముఖాయ వన్యసృజే కవల వేత్ర విశాన వేణు లక్ష్మా శ్రియే మృదు పదే పశుప అంగజాయ. శ్రీ బ్రహ్మోవాచ నౌమీడ్యతే బ్రవపుషే తడంబరాయ ృషేదంబరాయ పుంజావతం స పరిప్రేచ్ఛల సన్ముఖాయ పుంజావతం స పరిప్రేచ్ఛల సన్ముఖాయ జే కవల వేత్ర విశాన వేణు వన్యేష జయ కవల వేత్ర విశాన వేణు లక్ష్మాశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ లక్ష్మాశ్రియే మృదుపదే పశుపాంగజాయ చక్షురోన్మిలితమైన తస్మై శ్రీ గురువే నమః. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वरूपाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुधावदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सदी साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाकान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तराधा कान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गिराधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो बड़ा आनंद की बात है कि वापस चंडीगढ़ में आपके प्रसंग में फिर ये भागवतम के ऊपर चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो वैसे तो चंडीगढ़ जब आता हूँ तो ऐसा लगता है कि मेरा अच्छी तरह से छुट्टियाँ चल गई। तो पिछली बार इसी समय जब आए थे तब भागवत के 10 विषय वस्तु की ओर चर्चा किया था। तो वो चर्चा थोड़ा सा दार्शनिक था, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ही दार्शनिक था। तो जैसे वो उसका रिकॉर्डिंग मैंने मेरा रोड पे सुना है तो लोगों ने कहा इसको कौन समझाओगे इसको। तो मैंने सोचा इस बार जैसे प्रभु जी ने कहा था, नंद महाराज को ने कहा कि आप इस बार कुछ प्रार्थनाओं को लीजिए। तो मैं सोच रहा था कि कौन सा प्रार्थना लिया जाए कि भागवतम का सार है प्रार्थना है। भले ही लीला ग्रंथ है भागवतम, लीलाओं का सार है प्रार्थना। अधिकांश समय ऐसा होता है कि जब हम भागवतम में बैठते हैं या भागवत कथा होता है, भागवतम क्लास में बैठते हैं तब लीला होता है, बड़ा आनंद से श्रवण करते हैं। लेकिन जैसे प्रार्थना शुरू होती है, अरे एक ही चीज़ तो बार बार बोला जाता है, चलो निकालो पेज निकालो, और पढ़ते भी नहीं है प्रार्थनाओं को। लेकिन लीला का सार है प्रार्थना। आप देखिए प्रत्येक प्रसंग कहीं का भी हो, कोई भी भागवत का कोई भी प्रसंग हो, जैसे लीला समाप्त होता है अंत में क्या होता है, प्रार्थना। ध्रुव महाराज की लीला में प्रार्थना, प्रहलाद महाराज की लीला में प्रार्थना, और जहाँ गए बीच पिता महा का प्रार्थना, प्रार्थना के वो प्रसंग का समाप्ति होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे प्रत्येक भगवद्गीता के अध्याय में आखिरी श्लोक जो है वो पूरा भगवद्गीता का सार माना जाता है, तो वैसे ही पूरा प्रसंग में जो अंत में जो प्रार्थना है वो सार वस्तु है लीला का। क्योंकि वो प्रार्थना में भक्त भगवान के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। प्रार्थना मतलब क्या है, हृदय में भक्त की भावना है, उस भावना को शब्दों के रूप में बाहर भगवान को अर्पण करना ताकि सारा जगत को पता लगे कि ये भावना क्या है, ये भक्ति क्या है, तो वो प्रार्थना कहा जाता है। अस्तित्व में प्रार्थनाओं के द्वारा ही भक्त का हृदय को जान सकते हैं। लीला के श्रवण के श्रवण से अनेकों सिद्धांत को लिया जा सकता है, अनेकों कंक्लूजन हुआ जा सकते हैं, लेकिन भक्त के हृदय में क्या चल रहा है, क्या अनुभूति हो रहा है, क्या साक्षात्कार हुआ है, क्या रियलाइजेशन हुआ है, वो प्रार्थनाओं में रहता है। वैसे लीलाओं में देखें कभी कभी, जैसे ध्रुव महाराज का लीला, उनको राजा बनाने के बाद उन्होंने उनको क्रोध आया, यक्षों को उन्होंने मारा, वो देखेंगे अरे ध्रुव महाराज को क्या हो गया, ऐसा संदेह हो सकता है। लेकिन जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना में पता लगता है कितना महान भक्त है। तो इसलिए प्रार्थना अति महत्वपूर्ण है। भागवतम की हरेक प्रार्थना भले ही दिखने के लिए की जैसा दिख सकता है, वैसा है भी, इसका शुरुआत में ही बताया जाता है भगवान आपका जो रूप है उनके दर्शन करना अति दुर्लभ है, अभी आप तीनों गुणों से परे हो, आप सारा जगत का सृष्टि करता हो, ये हो, सब प्रार्थनाओं में एक ही प्रकार का शब्द होता है। लेकिन अंतर है, क्या अंतर है, प्रत्येक जीव भगवान के प्रति एक विशेष संबंध है, एवरी लिविंग एंटिटी हैज अ स्पेशल रिलेशनशिप कृष्णा. भले ही हम कहते हैं कि पांच रस है, ये पांच रसों के अंतर्गत भी जितने भी जीव जो भगवान से संबंध रखते हैं या सबके साथ संबंध है ही, तो उनका एक विशेष संबंध रहता है, विशेष रस रहता है. जैसे भागवत में कहा गया है, वास्तवम अत्र वस्तु शिविदम तापत्रयोन्मूलनम. वास्तवम इस शब्द का व्याख्या करते हुए कहा गया है, जैसे जीव का वास्तविक संबंध क्या है कृष्ण के साथ, वो है जीवेर स्वरूप वो है कृष्ण नित्य दास, दास है. लेकिन उसमें भी वास्तव संबंध क्या है, शांत दास साखी वात्सल्य माधुरी, ये पांच रसों में जो सेवा है ये वास्तव है. लेकिन ये वास्तव संबंध पांच रसों के अंतर्गत भी अंतर है. जैसे ब्रह्मा जी और गजेंद्र कुंती महारानी ये प्रार्थनाओं को देखेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ खासियत है, स्पेशलिटी है. जैसे एक थोड़ा सा परिचय दूं, गजेंद्र की प्रार्थना है, गजेंद्र की प्रार्थना पढ़ेंगे तो ये एकदम उपयुक्त है. किसके लिए? खास करके गृहस्थ भक्तों के लिए जो एकदम भौतिकता में फंसे हुए हैं. जिस हृदयपूर्वक प्रार्थना किया था गजेंद्र ने कि मेरा ये जो ग्रह है पकड़ लिया है, मगरमच्छ पकड़ लिया है, हे भगवान मुझे रक्षा करो. सबसे पहला ये जो दर्द हो रहा है दर्द से मुक्ति करो, बाद में मैं मुक्ति चाहता हूँ. तो ऐसा ये उनके लिए. जैसे कुंती महारानी प्रार्थना में आता है कि विपद संतुता शाश्वत भगवतो दर्शन पुनर्भव दर्शन, कि हे भगवान मुझे और दुख दो. जो ये जो प्रार्थना है ये वैराग्यों के लिए खास कर, नमो किंचन विद्या निवृत्ति गुणवृत्ति आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पते नमः, या किंचन लोगों के लिए है. तो ऐसे एक एक प्रार्थना इसके अंदर एक एक विशिष्टता है. ऐसा नहीं कि एक ही कैटेगरी में नहीं है, इवन पांच रसों के अंतर्गत भी विशेषता है. प्रत्येक भक्त विशेष, एवरी डिवोटी स्पेशल. तो इस प्रसंग में मैं सोच रहा था कि किसका लो किसका प्रार्थना लो, क्योंकि भागवत में बहुत सारी प्रार्थना है, कौन सा सेलेक्ट करे बहुत मुश्किल है. मैंने सोचा कि वापस लेटर लिखूं मंद महाराज प्रभु को कि कौन सा प्रार्थना बताए ले. तो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी हम तो ब्रह्म मध्व कौड़ीय संप्रदाय से. लेकिन ये देखा गया है, ऐसा अनुभव किया गया है, ब्रह्मा जी को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस नहीं देते हम लोग. हाँ ब्रह्मा, हाँ ठीक है ब्रह्मा ऐसा ऑब्जर्व किया गया है. लेकिन ब्रह्मा को भक्तों की लिस्ट में हम ज्यादा गणना नहीं कर, ध्रुव मारा हाँ प्रहलाद ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन ब्रह्मा हाँ ठीक है ब्रह्मा जी, लेकिन मानते नहीं है कि हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य. ये नोटिस किए होंगे आप, मैं अभी नोटिस किया कि कभी ब्रह्मा जी को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया. भले हमारे संप्रदाय के मूल आचार्य है और सबसे पहला भगवान ने कृपा ब्रह्मा जी के ऊपर किया है, तो इतना उनका स्थिति होने पर भी पता नहीं हमारे भक्तों में ऐसा है कि ब्रह्मा बोलते हैं हाँ ठीक है ओके. और एक भक्त है, जैसे आप भीष्म पितामह बोलोगे ठीक है भीष्म पितामह, 12 जहां महाजनों में लिस्ट है और भक्तों को बोला जाए आपका फेवरेट महाजन कौन है उसका लिस्ट बनाओ, वो सबसे पहले से आखिरी तक बनाओ, तो ब्रह्मा जी का लास्ट होगा उनका नाम. यमराज को भी पहले लिख देंगे और इतना तक जनक महाराज को भी लिख देंगे ठीक है पहले नंबर देंगे, ब्रह्मा जी का नंबर आता है लास्ट लिखेंगे. क्यों मालूम है? इसके बारे में बहुत विचार कर रहा था. इसका एक ही कारण है, क्योंकि ब्रह्मा जी मैनेजमेंट में है. तो भले वो बेचारे बड़े अच्छे भक्त है, सब कुछ है, लेकिन कोई पसंद नहीं करता उनको, क्योंकि वो पोस्ट है ना बड़ा खतरनाक चीज है. Just because. वैसे प्रताप रुद्र के प्रसंग में ये बात सुना गया है कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु कृपा प्रदान करना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इस बात बताया, भले ही वो महान भक्त है सब कुछ है इनके अंदर इतना भाव है, लेकिन ये जो राजा जो टाइटल है ना यही तकलीफ है. तो उसी प्रसंग में मैं डिड्यूस किया, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कोई आचार्यों के द्वारा, लेकिन मेरा विचार मेरा साक्षात्कार है, चाहे वो कितना भी अच्छा भक्त हो अगर वो मैनेजमेंट में है तो ब्रह्मा जैसा हालत आएगा उनका. भगवान का सबसे पहला कृपा उनको मिला, क्या बोलो, ब्रह्मा जी का अगर गुणगान करने जाए तो उनकी स्थिति साधारण स्थिति नहीं है। भागवतम एवं भगवते वास जो है जन्माद्य स्थितो अन्वयादितरत हर्थे शभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे। ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है? आदि कवि कहा गया है। आदि कवि, आदि कवि मतलब जो सबसे पहले कवि, कवि मतलब ब्राह्मण, ज्ञाता, वेदों का ज्ञाता को कवि कहा जाता है। तो बहुत सारे भक्त लोग ये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि में जो ब्रह्म है वो ब्रह्म समझते हैं, लेकिन ये ब्रह्म मतलब वेद है। वो श्लोक में तेने जिस जिन्होंने यानी भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मा जी के हृदय, ब्रह्मा जी को क्या कहा गया है उधर, आदि कवि कहा गया है। उनके हृदय में क्या किया, ये ब्रह्म यानी वैदिक ज्ञान को उनके हृदय में स्थापना किया, यानी सारा दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, रोज जो गाते हैं वो सबसे पहला भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकाशित किया। तो आप जानते हो कि पूरा भागवत का दसवां स्कंध का शुरुआत ही ब्रह्मा जी से होता है। तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी माँ ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी जाके सारे देवताओं को साथ में लेके गए, जाके पुरुषम पुरुष सुक्त तेना, वो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण को पुरुष सुक्त के द्वारा स्तुति किया। और ब्रह्मा जी ने क्या, भगवान ने क्या किया, सबको दर्शन भी नहीं दिया, ब्रह्मा जी को दर्शन भी नहीं दिया, ने कहा बस हृदय में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए और ब्रह्मा जी ने सबको बताया। यानी ब्रह्मा जी के माध्यम से ही भगवान सब कुछ करते हैं, सृष्टि करते हैं, अवतार का प्राकृति का वर्णन भी करते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन है देवताओं को, सब कुछ ब्रह्मा जी के इनसे माध्यम से करते हैं। तो इसलिए साधारण व्यक्ति नहीं है जीव, साधारण जीव नहीं ब्रह्मा। वैसे कहा गया है विरिंचिताम शतजन्म विपुमान, जो शतजन्म, जो रुद्र गीत में इस बात को कहा गया है कि 100 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म को अच्छी तरह से पालन करता है, वैदिक धर्म को पालन करता है, एक भी गलती के बिना 100 जन्म पालन करता है, तब वो ब्रह्मा बनने का योग्यता प्राप्त होता है। खास करके अभी का जो ब्रह्मा है वो साधारण नहीं है, बहुत बहुत भगवान के भक्त है, इज वेरी ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो भगवान जब भी कुछ शिक्षा देना चाहते हैं लोगों को, वो देवताओं के द्वारा देते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा देते हैं, अन्य देवता हो खास करके ब्रह्मा जी के द्वारा शिक्षा लिया। तो ये भागवत का पहला श्लोक में तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंतित सुरया, ये मुह्यंतित सुरया तेजो वारिवदन, ये इसका मतलब क्या है, भगवान को समझने के लिए बड़े बड़े देवता लोग वो भी विफल हो जाते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं। जिस प्रकार दूर से जल दिखाई पड़ता है लेकिन अस्तित्व में वो अग्नि है, अग्नि को जल मान के बैठता है, उसी प्रकार जिस प्रकार भौतिक जगत में ये हम ठग जाते हैं कोई चीज़ को जानने के लिए, उसी प्रकार देवता लोग भी जब भगवान को जानने के लिए प्रयास करेंगे, भगवान के विषय में सोचेंगे, वो भी कभी कभी मुह्यंती मोहित हो जाते हैं। इतना हद तक कि देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी को आदि कवि आदि कवि को वैदिक ज्ञान ने प्रदान किया, भगवत में ही बात को कहा गया, सबसे पहला दीक्षा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, सबसे पहला ब्राह्मण है ब्रह्मा जी होने के बाद दसवें स्कंद में मालूम पड़ा कि वो विमोहित हो गए। 13वां अध्याय जो है ब्रह्म विमोहन लीला है, 2 ब्रह्म विमोहन लीला है, एक 13वां अध्याय के और बाद में भी द्वारका में भी ब्रह्मा जी विमोहित हो गए। ये जो ब्रह्म विमोहन लीला है उसका विशिष्टता है, एक तो इस्कान के हिसाब से उसका विशिष्टता ये है कि प्रभुपाद जी भागवत की व्याख्या करते हुए, टीका करते हुए ब्रह्म विमोहन लीला तक व्याख्या किए, उसके बाद वो स्वधाम चले गए। 13th chapter 10वां स्कंद का 13वां अध्याय तक की प्रभुपाद जी ने अपना व्याख्या किया, उसके बाद वाला जो अध्याय हम जो चर्चा कर रहे हैं 14वां अध्याय है, ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का व्याख्या प्रभुपाद जी ने नहीं किया, उनके शिष्यों ने हृदयानंद गोस्वामी महाराज और अन्य लोगों ने मिलकर किया हुआ है। तो इस्कान के हिसाब से ब्रह्म विमोहन लीला अति विशिष्ट है। एक प्रकार बोला जाए प्रभुपाद जी ये सोचे कि ब्रह्म विमोहन लीला का वर्णन हो गया तो बस अभी बाकी सब नहीं भी होगा तो भी चलेगा, तो इस हिसाब से उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला आखिरी लीला है, आखिरी भागवत का अध्याय है जिसके ऊपर प्रभुपाद जी ने टीका किया। इसलिए आप देखेंगे डिविजन भी इसी प्रकार है, जो भागवतम के इंग्लिश ट्रेडिशन है उसका पतम जो भाग है वो सबसे पहला 13वां अध्याय तक है, उसके बाद 14वां अध्याय से दूसरा पार्ट शुरू होता है, यानी लास्ट चैप्टर ये है। और ये ब्रह्म विमोहन लीला की और एक विशिष्टता है, लीला के अंतर्गत लीला के हिसाब से एक विशिष्टता ये है कि तब तक भगवान ने क्या किया, ये पौगंड लीलाओं को उन्होंने संपन्न किया। कुमार पौगंड लीलाओं को शुरू किया, यानी जो 5 साल से जो 6 साल का जो लीला है वो ब्रह्म विमोहन लीला से शुरू होता है। तो इसमें एक बहुत फिलोसॉफिकल पॉइंट है, बहुत इंट्रिकेट पॉइंट है, क्योंकि 13वां अध्याय 12वां अध्याय के अंत में ये बात परीक्षित महाराज पूछते सुखदेव गोस्वामी को, ऐसा कैसे कि ये जो अघासुर का जो वध है ये 1 साल के बाद जाके सुनाया, ये लीला हुई थी 5 साल के आयु से पहले, और ऐसा वो लोगों ने वर्णन किया ये लीला को ताकि आज ही हुआ हो करके वो पौगंड लीला में वर्णन किया, यानी 6ठे साल में उन्होंने किया, ऐसा कैसे, ये प्रश्न था। जैसे आप इस बात के विचार करो कि भगवान श्री कृष्ण का अभी 5वां जन्माष्टमी होने वाला है, उसके पहले जन्माष्टमी से पहले आता है कौन सा, आता है बलराम जयंती आता है, तो जन्माष्टमी से पहले बलराम जयंती 8 दिन पहले, उस दिन बलराम जयंती था, तो सारे ग्वाल बाल एकत्रित हुए, कृष्ण सब लोग बस अभी चलो बछड़े चराने के लिए जाएंगे, तब बलराम जी नहीं आ रहे थे घर से, तो उन्होंने पूछा कि बलराम जी आओ चलेंगे, तो रोहिणी माता ने कहा कि आज बलराम जयंती है, उनका जन्मदिन है, उनको नहलाओगे, बहुत अच्छी तरह सब कुछ सजाओगे, आज बलराम नहीं आएंगे। और वो सब तो एक प्रकार खुश भी हुए थे, बलराम जी क्यों नहीं आए, आचार्य लिखते हैं वो खुश थे, क्योंकि बलराम जी ग्वाल बालों के ये वात्सल्य रस में थे, थोड़ा वात्सल्य ज्यादा दिखाई पड़ता था बलराम जी, खास करके जब कृष्ण के साथ ग्वाल बालों के साथ जाते हैं, वैसे मित्रता साथ के है लेकिन साथ साथ में वात्सल्य भी था। वात्सल्य मतलब ये देखना कि कोई पानी में कूद तो नहीं गया, कोई पानी के अंदर बहुत गहरा है तो नहीं जा रहा है ना, जैसे माता पिता के साथ बच्चे जाते हैं तो माता पिता बोलते इधर मत जाओ इधर मत जाओ, हमेशा बलराम जी इस प्रकार कहते थे। तो जैसे कभी होता है ना कि बच्चों को माता पिता लेके जाते हैं और बच्चों को अच्छा ही लगता है साथ में पिताजी है माँ है, क्या है बार बार उधर बैठो इधर करो वो करो तुम तंग आ जाओ, और एक दिन अगर बोलेंगे बेटा तुम अकेले जाओ एकदम खुश होके जाएंगे, इसी प्रकार ये बलराम जी नहीं है, आज कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं चलो करके वो निकल गए। तो उस दिन अघासुर का वध हुआ, अघासुर का लीला को वर्णन विस्तृत करके नहीं करेंगे लेकिन ये जानिए कि अघासुर का वध हुआ। अघासुर का वध होने के बाद तो कृष्ण और जितनी अन्य गाल वाल वाल बैठे सोचने लगे क्या करें, भी भूख लग रहा है, तो कृष्ण ने कहा भी नज़दीक में यमुना बह रही है, एक विशेष स्थान है, आज तक हम उधर गए नहीं, उधर जाके बैठेंगे, उधर सुंदर सा रेती है, बहुत मृदु है, शीतल हवा है, और खाने के बाद तो हमको हाथ धोना है, नज़दीक में यमुना भी है तो उधर ही हाथ धो लेंगे चलो। जैसे उधर सुंदरता का वर्णन करने के बाद कृष्ण सब बाल बाल एकदम सहमत हो गए और सब लोग बैठे, वो बैठने की जो शैली है उसका वर्णन है भागवत के 13वां अध्याय में, इसके पहले 2 अध्याय में कृष्ण बीच में बैठे थे और सारे ग्वाल बाल कैसे बैठे थे, उनके गोल गोल करते बैठे थे, जिस प्रकार कमल का फूल पंखुड़ी जिस प्रकार होता है बीच में रोल रहता है और राउंड राउंड करके पूरा गोल गोल करके सब बैठने लगे, जैसे कमल का पुष्प उस प्रकार दिखाई पड़ रहा था। और अपने जो घरों से जो भी सामान लाए, जो भी खाद्य पदार्थ लाए, सब लोग निकाले, एक पत्थर के ऊपर रखा, जहाँ जहाँ कहीं भी जो भी स्थान लगे उसके ऊपर रखे और खाने लगे। और एक ग्वाल बाल ने क्या कहा कि एक घर से जलाया हुआ वो लिया, देखे वो खाते खाते उसमें देखो मेरी मेरी माँ ने कितना सुंदर बनाया तुम खाओ करके अपने दूसरे ग्वाल बाल को खिलाए, जब वो खा रहा था बहुत स्वादिष्ट है तो दूसरा वाले तुम उसके खिला रहे मुझे नहीं खिला रहे हो करके उसने छीन के अपने मुंह में लिया, और एक ग्वाल बाल ने सोचा अरे सब खा रहे लेकिन कृष्ण को तो खिलाओ, उनके मुंह में जो उसको निकाल के कृष्ण के मुंह में डाला, कृष्ण एकदम आस्वादन कर रहे। तब ब्रह्मा जी देखे क्या हो रहा है वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कौन है, यज्ञभुगीश्वर जो यज्ञ में ही शुद्ध चीजों को ग्रहण करते हैं, वैसे जो भगवान जैसे ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, ये झूठा क्यों खा रहा है? वो भी एक झूठा नहीं, डबल नहीं, ट्रिपल झूठा। तो ब्रह्मा जी एकदम विमोहित हो गए। तो उनका सारा वैदिक ज्ञान है ब्रह्मा जी को, ये होने के बाद भी अभी विमोहित क्यों हुए? क्योंकि भगवान इस ब्रह्म विमोहन लीला के द्वारा सारा जगत को एक ऐसा ज्ञान देना चाहते हैं जो वेदों में भी नहीं है, जो वेद गुह्यम, वेद गुह्य मतलब वेदों के लिए भी गुह्य है, ऐसा ज्ञान को प्रदान करने के लिए ब्रह्मा जी के ब्रह्म विमोहन लीला भगवान ने संपन्न किया। ब्रह्मा जी मोहित हो गए, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने सोचा नहीं कि सारा वैदिक मंत्रों को उनके अंदर जैसे कंप्यूटर में आते हैं ना, क्लिक करो तो सब जो स्कैन करने लगे, ऐसा कहीं वेदों में वर्णन नहीं है। जो भी ज्ञान समस्त ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है उसके अंदर ऐसा वर्णन नहीं, परब्रह्म ऐसा करता, इसका मतलब ये क्या भगवान है कि नहीं, वो टेस्ट करना चाहते। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, मैं अपना शक्ति को दिखाऊंगा। तो ऐसा सोचने लगे, जैसे एक किसान बीज बोता है, बीज बोने से क्या होगा, बड़ा वृक्ष होता है बाद में, है कि नहीं? तो वैसे ही भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा जी का शक्ति को एक बीज रूप में स्वीकार किया, ताकि वो आगे आके अपना जो स्वयं निजी ऐश्वर्य को सबको सारे जगत के सामने दिखाई पड़ा। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी मोहित हो गए, ये कौन सा चीज के लिए, कौन सा शिक्षा देना चाहते ये ब्रह्म मोहन लीला के द्वारा? ये शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो वेदों के लिए भी गुह्य है, इतना हद तक कि केवल गौड़ीय वैष्णव ही इस बात को स्वीकार करते हैं। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत या को स्थापित करने के लिए ये ब्रह्म विमोहन लीला को किया गया है। तो इसलिए जब इस लीला का वर्णन हुआ भागवतम में, इसके ऊपर टीका लिखते गए, भागवत के ऊपर टीका करते हुए श्रीपाद मध्वाचार्य जब 12वां अध्याय तक अच्छी तरह से टीका किए, जब 13वां अध्याय ब्रह्म विमोहन लीला और ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ये दो अध्यायों के ऊपर मध्वाचार्य ने टीका नहीं किया। ऐसा क्यों श्रीपाद मध्वाचार्य ने टीका नहीं किया? क्योंकि श्रीपाद मध्वाचार्य कौन से संप्रदाय के हैं? ब्रह्म संप्रदाय के। एक तो विचार ये है कि हमारे जो संप्रदाय आचार्य है वो कैसे उमित हो सकते हैं, है कि नहीं? ये तो लोगों का कहना है, लेकिन असलियत में मेरे आचार्य का विमोहन जो है उसके ऊपर टीका करने का मेरा कोई अधिकार नहीं, ये भाव था श्रीपाद मध्वाचार्य का। इसलिए मध्वाचार्य ने इसके ऊपर टीका नहीं किया। ये दो है, और तीसरा है अति महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री चैतन्य महापुरुष श्रीपाद मध्वाचार्य को कहा कि दास रस का वर्णन करना, बाद में आके मैं ऐसा रस को प्रदान करूंगा सारा जगत को जो आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। जैसे आप सब जानते हो चैतन्य चरितामृत में शुरुआत भी लिखा गया है कि अनर्पित चरण चिरात कारुणा अवतीर्ण कलो समर्पयितुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो ये उन्नतोज्ज्वल रसाम ये ब्रह्म विमोहन लीला में छुपा हुआ है। क्या है वो, वो क्या ज्ञान है? ये ज्ञान है कि माधुर्य जो है ऐश्वर्य से श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि भगवान मतलब ऐश्वर्य से संपूर्ण ऐश्वर्य से सुसज्जित होना चाहिए, ये मधुरता जो है ये भगवान का ये ऐश्वर्य से गौण है, जब जरूरत पड़ेगा तब वो ऐश्वर्य से नीचे माधुरी में उतर पड़ेंगे, ऐसी भाव था ब्रह्मा जी का। लेकिन इधर सोच रहे, इधर देख रहे, ये माधुरी प्रदान दिखाई पड़ रहा है, माधुरी प्रदान मतलब स्वीटनेस दिखाई पड़ रहा है, कहीं भी ऐश्वर्य है तो भी ऐश्वर्य जो है वो माधुर्य के गौण है, गौण स्थिति में है। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान मतलब सर्वैश्वर्य पूर्ण होना चाहिए, ये कैसे भगवान हो सकते हैं? यानी ब्रह्मा जी का मंतव्य था ऐश्वर्य जो है माधुर्य से श्रेष्ठ है, ऐसा मंतव्य को खंडन करके सही सिद्धांत माधुरी को ऐश्वर्य से श्रेष्ठ साबित करने के लिए ये विमोहन लीला को भगवान ने ब्रह्मा जी के मुख से संपन्न कराया। इसलिए जो व्यक्ति ब्रह्म विमोहन लीला का श्रवण करता है उनके हृदय में भी ये जो अनर्थ है इसको अनर्थ माना गया है। किसको? ऐश्वर्य को माधुरी से श्रेष्ठ समझना उसको अनर्थ माना गया है। ये अनर्थ का निवारण हो सकता है क्योंकि जब तक इस मधुरता का आस्वादन करने की स्थिति में नहीं है तब तक कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। जैसे भाव के स्तर में व्यक्ति पहुंच सकता है कि लेकिन भाव से प्रेम तक पहुंचना है, श्री कृष्ण ठाकुर कहते हैं कि ये माधुरी को ऐश्वर्य से श्रेष्ठ या ऐश्वर्य को एकदम तुच्छ समझना ये होगा। तो इसलिए कहा गया है कि आप दामोदर राष्ट्र की प्रार्थनाओं में भी देखते हो कि कौन सा प्रार्थना है कि वरं देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा नाचान्यम ऋणे हम रेशादपीहा। तो उस पर सत्यव्रत में प्रार्थना करते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, इतना हद तक कि मोक्ष भी नहीं चाहिए, मोक्ष आवधिन वैकुंठ का भी स्थान नहीं चाहिए, इतना हद तक कि नवधा भक्ति से उत्पन्न हुआ जो फल है वो भी नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? केवल प्रेम भक्ति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करने क्या करना होगा, ये बात जानना होगा कि ये जो माधुर्य स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का, ये माधुर्य लीला है वो श्रेष्ठ है, ये बात को समझना होगा, नहीं तो प्रेम प्राप्त नहीं होगा। ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है। इसलिए खास करके ब्रह्म विमोहन लीला के ऊपर अनेकों आचार्यों ने टीका किया है, खास करके गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने इसके ऊपर विस्तृत टीकाएं की हैं, खास करके उनके प्रार्थनाओं के ऊपर विस्तृत टीकाएं की है। सनातन गोस्वामी पाद विश्वनाथ जी ठाकुर दोनों ने अच्छी तरह से टीका किए हैं, और खास करके श्रीधर स्वामी उनका भी इसी मंतव्य है। ये जो लीला है इसके अंदर माधुर्य प्रदान करके जो सिद्धांत को उसको स्थापना किया गया है। तो ब्रह्मा जी का इस प्रकार विमोहन हो गया, उन्होंने देखा कि ऐसा कैसे मैं अपना शक्ति दिखाऊंगा। तो भगवान को मालूम था कि कुछ होने वाला है, कुछ करना है, कि इनको भगवान की योजना से लीला होता है, कि योग माया शक्ति के हिसाब से ये लीलाएं होती है। तो क्या हुआ, गाय बछड़े चल रहे थे, तो सोचा कि वैसे नदी के किनारे में थोड़ा रेती होता है, तो रेती की वजह से घास पूरा उगता नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का सा रहता है घास। तो बच्चे सोचने लगे घास इधर ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा घने जंगल में जाएंगे जहां रेती समाप्त होगा तो उधर और घास अच्छा रहेगा करके धीरे धीरे से वो गए। जब वो गए तो उधर आचार्यगण लिखते हैं, जो लोग सोचते हैं कि मुझे ज्यादा घास जहां मिलेगा उधर जाऊंगा, वो ज्यादा घास खाने के लिए कृष्ण से दूर जैसे जाएंगे उनका हालत खराब हो जाएगा, माया पकड़ लेंगे। खास करके बड़ा इंस्ट्रक्शन है सारे गृहस्थों के लिए, कृष्ण के नजदीक में जो मिलता है, जो भौतिक चीज से मिलता है उसे संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। थोड़ा सा भौतिक चीज की लालसा की वजह से कृष्ण से थोड़ा सा दूर गया तो माया तुरंत पकड़ लेती। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये बड़ा सुंदर मौका है, चलो जाके मैं उन बचनों को मैं चुरा लेता हूं करके। वो आए, बचनों को चुराने के लिए आए और वो चुरा भी लिए, लेकिन कौन से बचनों को चुराए वो आचार्यगण कहते हैं। क्या कहते हैं कि ब्रह्मा जी का क्या औकात है उन बचनों को चुराने का, क्या औकात है, क्या कुछ छूने का भी औकात नहीं है अस्तित्व में, इतना हद तक कि वृंदावन में प्रवेश करने का भी कोई औकात नहीं है, लेकिन कैसे छू पाए, कैसे चुरा पाए, चुराने के क्या कहना, छू भी नहीं सकते तो कैसे चुराए। तो भगवान ने क्या किया था, ये अपने जो बचनों को उन्होंने खुद चुरा लिया था कृष्ण ने, और क्या किया, अपनी योग माया महामाया शक्ति के द्वारा, यानी भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान ने क्या किया, एक नया ग्वाल बचनों को सृष्टि किया। ये सब कहां से, कौन से भौतिक माया के द्वारा, यानी महामाया के द्वारा सृष्टि किया जो बचड़े है उनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया, क्योंकि ब्रह्मा जी के अंदर में पूरा भौतिक जगत उनके अंदर में ही है, तो भौतिक चीजों को चुरा सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन ग्वाल बालों को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो अस्तित्व में चोर कौन है इधर, ब्रह्मा जी नहीं है, कृष्ण है चोर, असली चोर। तो ब्रह्मा जी केवल उनका विमोहन, कृष्ण कौन है या कृष्ण को माधुर्यता है ऐश्वर्य, उनका विमोहन केवल इसी के अंतर्गत नहीं था, उनका विमोहन जो है उसके अंतर्गत भी था कि मैं चुराया, वो भी विमोहित था, ब्रह्मा जी ने नहीं चुराया, he was completely bewildered even because of that also। तो ब्रह्मा जी ने बचनों को चुराया तो सारे ग्वाल बाल देखने लिए बछड़े दिखाई नहीं पड़े, घबराहट हुआ, घर में जाके क्या बोलेंगे अपने माता पिता को, क्या सारे बछड़े चोरी हो गए, ऐसा बोलेंगे क्या, तो घबरा गए। तो कृष्ण का, आप चिंता मत करो मैं जाता हूं। तब वर्णन है कि किस प्रकार कृष्ण निकल पड़े, तो कृष्ण के लेफ्ट हैंड में दही रईस था, दही और चावल का मिलावट मिश्रण था, योगर्ट दही रईस, और एक हाथ में थोड़ा सा अचार था, ऐसा वर्णन है तो आचार्यों का। तो ये तो बड़ा, मैं जब इस बात को पढ़ रहा था कि कौन वृंदावन में दही रोज अचार खाने वाला कौन रहेगा, वो तो साउथ इंडियन फूड है। दही रोज अचार जो है साउथ में आप जाएंगे पूरा दही के बिना तो पूरा फुल नहीं होता है खाना, दही होगा उसके साथ अचार होगा ही। कि बोले कि ये तो वृंदावन तो नॉर्थ में है और ये कृष्ण, ये दही रस अचार तो ये तो साउथ इंडियन फूड है वैसा विचार है, तो चपाती वगैरह तो नॉर्थ में चलता है, लेकिन दही रस और योगर्ट लेके घूम रहे थे, तो घूमते घूमते हर जगह गए ढूंढ रहे थे। ऐसे तो कृष्ण जो है वो सब, उनको सब मालूम है, ऐसा कौन क्या चीज नहीं मालूम, इज नो ये परमात्मा है। तो मालूम होने पर भी वो ऐसे दिखा रहे थे क्या क्या हो गया, कहाँ क्या कहाँ गए, गुफाओं में गए, पहाड़ों में गए। जब वापस आए, वापस आके देखते ग्वाल बाल भी गायब है। हाँ, तब कृष्ण को मालूम पड़ा हाँ ये ब्रह्मा जी का काम है, अस्तित्व में ब्रह्मा जी का काम है करके कृष्ण को पहले से मालूम है, लेकिन ब्रह्मा जी को दिखाने के लिए देखो मैं विमोहित हो गया हूँ, इस बात के लिए उन्होंने इस प्रकार लीला को संपन्न किया। तब कृष्ण ने सोचा ठीक है मैं ब्रह्मा जी को शिक्षा दूंगा, आप सबको स्टोरी मालूम है किस प्रकार अपने आप को पूरा विस्तार किया, ये एक्सपैंडेड हिमसेल्फ, एक साल तक उन्होंने विस्तार किया, इतना मतलब अभी 5 साल पूर्ण होने के लिए आ रहे, 5वां जन्माष्टमी है, वो 5वां जन्माष्टमी के पहले आने वाले बलराम जयंती है उस दिन ये लीला हुआ। पूरा 1 साल तक पूरा व्रजवासियों को उन्होंने मात्सल्य रस को पान कराया, वो बाद में चर्चा करेंगे क्योंकि ये प्रार्थना में वो विशिष्ट बताती है वो कैसे उन्होंने सबको संतुष्ट किया, सारे व्रज गोपियों को और जो वात्सल्य रस में है और सारे ग्वायों को किस प्रकार उन्होंने संतुष्ट किया वात्सल्य प्रेम में, वो बाद में चर्चा करेंगे आगे प्रार्थनाओं में। लेकिन ये बात जानिए कि तब क्या हुआ कि अगले साल नेक्स्ट ईयर यानी छठा जन्माष्टमी आ रहा है, वो जन्माष्टमी आने के पहले बलराम जयंती है, बलराम जयंती आने के 5 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है, बलराम जी को संदेह हुआ कुछ तो गड़बड़ है, ये गड़बड़ 1 साल से चल रहा है, ऑलमोस्ट 1 साल से ये क्या गड़बड़ है। तो बलराम जी ने देखा कि बछड़ों को गाय इतना प्रेम कर रही है, इतना प्रेम कर रही है कि पहले उनका प्रेम था लेकिन अभी प्रेम बढ़ गया, उतना बढ़ गया कि पहले जो जो गाय या गोपियां कृष्ण को जिस प्रकार प्रेम करती थी वही प्रेम अभी बछड़ों को कर रहे हैं, बलराम जी को भी मालूम पड़ रहा है। दूसरी बात उन्होंने देखा 1 साल के अंदर गायों ने बहुत सारे बछड़ों को जन्म दिया, लेकिन ये 1 साल के अंदर जो बछड़ों को जन्म दिया गायों ने उन बछड़ों के प्रति ज्यादा प्रेम नहीं है, वो पहले 1 साल के पहले की जो बछड़े हैं उनके प्रति ज्यादा प्रेम है, क्यों? क्योंकि वो सारे जो कृष्ण के विस्तार है। और तीसरा था कि जो बछड़े 1 साल पहले से ही वो दूध पीना बंद किए तो भी घास खाने लगे, क्योंकि कुछ समय के बाद जो बछड़े दूध पीना बंद कर देते अभी वो बछड़े भी दूध पीने लगे। तो ब्रह्मा जी बलराम जी को ये 3 चीजें आश्चर्यचकित लगा, तो उन्होंने कृष्ण की आंखों में आंख डाल के पूछे क्या है क्या ये, व्हाट इज दिस। तब कृष्ण ने उनको पूरा समझाया, ये एक्सप्लेन टू हिम द ब्रह्मा, बलराम जी समझ गए। तो प्रश्न उत्पन्न होता है बलराम जी हर चीज जानते हैं, ऐसा कोई भी चीज नहीं जो बलराम जी जानते नहीं है, कि बलराम जी आधार शक्ति है, वो पूरा लीलाओं का आधार है। लेकिन एक ऐसी लीला है ये वाला कौन सा ब्रह्म विमोहन लीला जो बलराम जी के अज्ञान में हुआ है, इसलिए ब्रह्म विमोहन लीला की विशेषता है। इतना हद तक कि इवन रास लीला भी होता है तो अनंग मंजरी बलराम जी का विस्तार है, उनकी आधार से होता है क्योंकि आधार शक्ति है बलराम जी, वो अपने आप को विस्तार करते हैं भगवान की लीलाओं को संपन्न करने के लिए, एक धरातल चाहे वो धरातल के रूप में विस्तार करते हैं। अभी ये बलराम जी को भी नहीं मालूम, तो बलराम जी सोचने लगे ये जो विमोहन मुझे हुआ है वो कैसे हुआ है, ये क्या नर विमोहन है, क्या कोई ऋषि लोगों ने मेरे ऊपर ऐसा जादू डाला है, हो ही नहीं सकता, क्या ये असुर लोगों ने कुछ किया है, हो ही नहीं सकता, ऐसा क्या विमोहन है कि जिसकी वजह से मैं, क्या देवता लोगों ने मेरे ऊपर विमोहित किया है कि नहीं, ये मैं मुझे विमोहित करने वाला अगर कोई है तो केवल कृष्ण है और कोई नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से उन्होंने पूछा कृष्ण से क्यों क्या है ये, तब कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, बलराम जी से ये बात क्यों छुपाया, क्यों एक ही कारण था, जो प्रेम कृष्ण को अन्य ग्वाल बालों से है और ग्वाल बालों का प्रेम कृष्ण से है वो कृष्ण जानते हैं उनका प्रेम असलियत में बलराम जी से ज्यादा है। बलराम जी कौन है? आदि गुरु है। ये कृष्ण का सिद्धांत है। जो भक्त का प्रेम गुरु में है उसको देख के कृष्ण प्रसन्न होते, इतना हद तक कि कृष्ण सोचते हैं जो एक गुरु मेरे शुद्ध भक्त और उनके जो शिष्य है, उनके जो प्रिय है, उनके बीच में मैं भी टांग नहीं हटाऊंगा। तो गुरु और शिष्य के बीच में जो विरह है वो भगवान और भक्तों के बीच में विरह से अधिक ज्यादा है। तो ये कृष्ण जानते हैं, इसलिए मैं सोचा कि सारे इतने भी ग्वालपाल है, मेरा विरह को तो सहन कर सकते लेकिन बलराम जी का विरह सहन नहीं कर सकते। दूसरी बात, बलराम जी जो है वो इन ग्वाल बालों का विरह को सह नहीं सकते। अगर बलराम जी को मालूम पड़ा कि ये सारे ग्वाल बालों को मैं चुरा के कहीं रखा है, वो बलराम जी एक साल जीवित नहीं रह सकते। तो इस बात के लिए उन्होंने कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने बलराम जी की इस बात को एहसास नहीं होने दिया। और वो हो सकता है कि ग्वाल बाल तो कृष्ण ने कहीं छुपा के रखे है, तो ऐसा कैसे कि वो कृष्ण के विरह में कैसे रह पा रहे हैं, कैसे जी पा रहे हैं। तो कृष्ण पूरा एक साल तक अपना ही विस्तार में, एक सेपरेट विस्तार में ग्वाल बालों के साथ लीला कर रहे थे। उनको ग्वाल बालों को मालूम भी नहीं पड़ा कि क्या हो रहा है, उनको ऐसा लगा कि कृष्ण हमारे साथ है, बस इतना मालूम पड़ रहा। तो एक साल हो गया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी आके देखे कि ब्रज में जैसा का वैसा ही चल रहा है। एक साल के बाद एग्जैक्टली अगला दिन जो है वो बलराम जयंती था। अगला बलराम जयंती के दिन ही लीला हुआ। कौन सा लीला का समाप्ति भी एक बलराम जयंती के दिन हुआ। उस दिन बलराम जी नहीं आए थे। तो कृष्ण अन्य ग्वाल बालों के पास साथ में गए, बछड़ों के साथ, वो ही अपने ही विस्तार थे। ब्रह्मा जी आके तंग हो गए चकित, तब एकदम वंडर, ये अद्भुत रस को अनुभव करते हुए वो सोचने क्या हो गया। तो कृष्ण ने सोचा अभी ज्यादा उनको परेशान करना जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या किया, अपने विस्तारों से जो असली रूप दिखाया, विष्णु रूप दिखाया, वासुदेव कृष्ण का स्वरूप दिखाया। ब्रह्मा जी इसको देख के एकदम आश्चर्यचकित, पूरा विस्तृत वर्णन है किस प्रकार अनेकों लोग उन विष्णु स्वरूपों को सेवा कर रहे हैं, अनेकों जीव, और पूरा वैकुंठ को उन्होंने दिखा दिया। और ब्रह्मा जी इसको देख के मोहित हो गए। सोचा मालूम पड़ा कि ये साक्षात कृष्ण कोई और नहीं है, सारे विष्णु तत्वों का, सारे अवतार जितने भी विष्णु हैं उन सब यही स्वरूप से निकलता है। ऐसे उनको जैसे ज्ञान हुआ तो जैसा का वैसा जो स्वरूप में वापस आगे बछड़े और सारे जो बछड़े और बाल बाल है वो गायब हो गया। ब्रह्मा जी और कृष्ण ने उधर, और ब्रह्मा जी ने कृष्ण को वही स्वरूप में देखा। कौन सा स्वरूप में देखा? वही हाथ में धैर्य लिए हुए हैं और एक हाथ में अचार है। एक साल के बाद भी वही स्वरूप कैसे है, ये कोई प्रश्न उत्पन्न सकता है। ये ब्रह्मा जी को दिखाना चाहते हैं कृष्ण कि यही स्वरूप है, ये सारे विष्णु तत्वों का स्रोत है। तो यही स्वरूप में ब्रह्मा जी को दर्शन दिया भगवान ने, और ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे। कैसे प्रार्थना करने लगे, उसके पहले वो प्रणाम किए भगवान को। ऐसे प्रणाम किए तो आचार्य कर लिखते हैं, ब्रह्मा जी तो एक बार प्रणाम करने से नहीं होता है, ठीक है ना, एक बार तो नहीं हो पाएगा, एक बार करना, चार बार करना पड़ेगा, चार सर है ना। तो प्रणाम किए उठे, प्रणाम किए उठे, प्रणाम किए और उठे, चार बार करके उनका चरण को पकड़ लिए और आंखों से आंसू बह रहा है, उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को उन्होंने धोया। और अभी भी वृंदावन जाएंगे, राधा गोविंद मंदिर के सामने रंगनाथ जी मंदिर है, उसके बाजू में ब्रह्मकुंड है, बड़ा वो सुंदर बनाए उधर ब्रह्मकुंड को, जहाँ वृंदावन गए होंगे देखेंगे, दर्शन करेंगे। ब्रह्मकुंड को बहुत सुंदर अद्भुत तरीके से बनाया, उसका पूरा ब्रह्म संहिता का सब श्लोकों को रचना किया है, और पूरा इस्कान वालों ने कुछ व्रज का जो डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट वो लोगों ने बनाया है। ब्रह्म कुंड है, बड़ा सुंदर कुंड है उधर, ये ब्रह्मा जी की प्रेमाश्रुओं से बना हुआ कुंड है। वो प्रेमाश्रु कैसे, भगवान की चरण कमलों को धो के चरणामृत के रूप में ब्रह्म कुंड है। इसलिए अनेकों भक्त लोग जाते वृंदावन लेकिन ब्रह्म कुंड दर्शन नहीं करते। ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि जाना चाहिए, जब जाएंगे धाम में इन सब जगह जाना चाहिए, लीला का श्रवण करना चाहिए। तो हमको बस ऐसा नहीं कि ठीक है गए और आ गए, एक दो मंदिर देख लिया हो गया, नहीं, तो लीला का हर एक स्थल, क्योंकि गोस्वामियों ने बहुत मेहनत किया है। चैतन्य महाप्रभु ने गोस्वामियों केवल इसी काम में लगाया, जाओ जाके लीला स्थलियों को आप प्रकाशित करो। तो प्रकाशित किए तो हमको उसका पूरा फायदा लेना चाहिए। वी शुड गो देयर। बहुत सारे भक्तों से पूछा कि ब्रह्मकुंड में गए, राधा गोविंद मंदिर में गए तो कहाँ ये कहाँ है, वो मालूम भी नहीं रहता है। वो कुछ फेमस चार पांच मंदिर है, वो रिक्शा वालों को बोलेंगे कि लेके जाओ, तो घूम के आ गया, बस हो गया दर्शन। जैसे दिल्ली से जाते हैं लोग बांकी बिहारी के दर्शन करके निकल आते है कि नहीं, तो वैसे ही हमारा इसमें भी उसी प्रकार रिचुअलिस्टिक हो गया। ठीक है, राधा गोविंद जगह देखो, राधा रमण हो गए। मैं बहुत सारे ऐसे भक्त है जो एकदम राधा रमण मंदिर तक जाएंगे, क्योंकि फेमस मंदिर है, जाएंगे उसके बाजू में गोकुलानंद उधर नहीं जाते। आश्चर्य की बात है, अपने भक्तों की बात है। तो वृंदावन जब जाएंगे तो ये लीला स्थली को खोज खोज करके भक्तों से पूछ के उधर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। वो ये जो चीज फेमस है उसको अपनाएंगे, ये रिचुअल बोला जाता है। जो प्रसिद्ध है उसको देखेंगे, ये अपना सिद्धांत नहीं है। कौन सा प्रसिद्ध है, कौन सा प्रसिद्ध है, वो से मतलब नहीं। हमको कृष्ण भक्ति से, कृष्ण प्रसिद्ध है तो कृष्ण के संबंधित हर चीज प्रसिद्ध है। ये ब्रह्मकुंड भी प्रसिद्ध है। तो मैंने देखा बहुत जगह बहुत भीड़ रहता है, लेकिन ब्रह्मकुंड में इतनी बार जब भी जाता हूँ कोई नहीं रहता। पहले तो बहुत एकदम गंदा सफड़ा हुआ था, ऐसे गंदगी नहीं है, लेकिन अभी तो बहुत सुंदर बना है। वो बनाने के बाद भी ने दो बार जाके देखा कि कोई भक्त जाता ही नहीं उधर, नोबडी गोज देयर। तो लेकिन जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम। अब देखिए राधा गोविंद मंदिर है, उसके सामने रंगनाथ जी का मंदिर है, उसके ठीक बाजू में है, जस्ट यू हैव टू गो, छोटा सा रास्ता जाता है। वो एकदम खुला रास्ता नहीं है, वो दो ही रिक्शा उसके अंदर घुस सकता है बस। वो रास्ता में आप जाओगे तो ब्रह्मकुंड बहुत सुंदर बना है। नेक्स्ट टाइम वृंदावन जाइए, इसको मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो ब्रह्मा जी का प्रेम के आंसू बहने लगे और बहते बहते कृष्ण का चरण कमलों को धोए धोके उधर बड़ा सा सुंदर कुंड बना। और ब्रह्मा जी अपनी अपराध, अपराध किया ना कृष्ण के प्रति, अपराध के पछताव में एक दूसरा भगवान की ये स्वरूप से सारे वैकुंठ के जितने भी स्वरूप है, सारे रूपों का, सारे स्वरूपों का स्रोत ये ग्वाल बाल स्वरूप है, ग्वाल गोपाल का स्वरूप है, ये स्वरूप सारे स्वरूपों का स्रोत है, इस बात को जानते हुए अद्भुत रस का आस्वादन करते हुए इन प्रार्थनाओं को वर्णन। ये जो प्रार्थना है ब्रह्मा जी की प्रार्थना, एक तो पछताव अपराध के पछताव में, दूसरा अद्भुत रस का आस्वादन करते हुए इन प्रार्थनाओं को वर्णन कर रहे। ये दोनों का मिश्रण है इन प्रार्थनाओं में, उसका ही एक्सपेंशन आचार्य करते हैं इन प्रार्थनाओं का। हर एक शब्द के ऊपर अनेकों तरीके से अच्छी तरीके से टीकाओं करते हुए ये आचार्य कहते हैं, जितना हो सके उतना हम करने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि ये श्री विश्वनाथ ठाकुर इन ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं का टीका का प्रारंभ करते हुए ये कहते हैं, जो बड़े बड़े भक्त है, जो अनेकों सिद्धांत के रत्नों को इन प्रार्थनाओं से निकाल सकते हैं, वो मेरे ऊपर हंसे। क्यों? क्योंकि उनमें से मैं कुछ ही चीजों को देख पा रहा हूं, गिन पा रहा हूं। मैं तो इतना बड़ा भक्त नहीं हूं, इसलिए ज्यादा जानता नहीं इन ब्रह्मा जी को प्रार्थनाओं के बारे में। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति गया, बहुत सोने का भंडार पड़ा हुआ है, कोई दक्ष होता है बहुत सारे चीजों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन मूर्ख होगा तो क्या करेगा, एक दो चीजों को इकट्ठा करके ला पाएगा। वो मूर्ख को देख के सारे बड़े बड़े लोग हंस सकते हैं। उसी भाव से कह रहे हैं कि इन सिद्धांतों को, रत्नों को मैं ज्यादा जानता नहीं, केवल कुछ ही चीजों को निकाल सकता हूँ। उसको देख के महान भक्त मेरे को हंस सकते हैं, लेकिन फिर भी ये साहस करता हूँ कि मैं ब्रह्मा जी की प्रेममय प्रार्थनाओं को, ये प्रेममय प्रार्थनाओं का सागर को मैं पार कर सकता हूँ। ये नम्र भाव से श्री विश्वनाथ ठाकुर इन ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं को स्टार्ट एक्सप्लेनिंग, बड़ा सुंदर तरीके से ये प्रार्थनाओं का वर्णन है। ये पहला श्लोक आज हमने केवल एक श्री गणेश के रूप में उच्चारण किया है। मैंने आज ये सिलेबस बना के रखा था कि उसका जो प्रलोग है, यानी इसके पहले का जो उसका बैकग्राउंड है वो बताऊं, ताकि वो बताए बिना डायरेक्टली इस पे जाएंगे कोई मतलब नहीं होता है। इसे ये इसका ये प्रार्थनाओं का बैकग्राउंड ये है, ये प्रार्थनाओं का बैकग्राउंड पूरा लीला है। और अंत में ब्रह्मा जी यू आर स्ट्रक विद वंडर एंड एज ए रिपेंटेंस फॉर हिज ऑफेंस ही इज डूइंग हिज प्रेयर्स। जैसे मैंने कहा प्रार्थना अति अति महत्वपूर्ण है। कभी भी आज से भागवतम पढ़ेंगे तो जब प्रार्थनाएं आती है उसको बहुत श्रद्धा और ध्यान पूर्वक पढ़े, उसको खाली पेज ऐसे घुमाते घुमाते मत जाइएगा। इतना हद तक कि कोई दो श्लोक का प्रार्थना का दो श्लोक पढ़िया, तीसरा आठ लो घुमाओ, नेक्स्ट स्टोरी बताओ, नेक्स्ट स्टोरी, ऐसा नहीं जाना चाहिए, शुड नॉट डू दैट, इट्स गॉट लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट। ठीक है, इधर समाप्त करेंगे, कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्वेश्चन। हाँ चले,
धन्यवाद बहुजी को अच्छी क्लास के लिए। अब बहुजी जो हम सुनते हैं कि एक ब्रह्मा नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मा हैं, तो सब ब्रह्मा जी के साथ ये त्रिभुवन लीला हुआ है या मतलब सबने प्रेयर्स किया या
ये जो भागवतम है आचार्य को कहना है कि अभी का जो ब्रह्मा है ये ब्रह्मा का ये दिन, इस दिन का, और अभी जो कृष्ण प्रकट हुए 5000 साल पूर्व वो लीला है। ये भागवतम पूरा अभी का कृष्ण का लीला है, यानी 5000 साल पूर्व प्रकट हुए कृष्ण। अन्य पुराणों में अन्य जगह जो लीलाओं का कृष्ण नाम वर्णन है उसका कोई हिसाब नहीं है कि कब का है और कौन सा इसका, जनरली इसी ब्रह्मांड का है लेकिन कब का और कहाँ का है वो कोई बोल नहीं सकता। लेकिन ये भागवतम का ये 10वां स्कंद है, ये खास करके ये जो कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो 28वां मन्वंतर वैवस्वत मनु का 28वां मन्वंतर में 7वां मनु यानी वैवस्वत मनु के 28वां जो चतुर्युग है उस चतुर्युग के जो द्वापर युग के कृष्ण है जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार प्रकट होते हैं वैसे कृष्ण का ही लीला है। सो इसी ब्रह्मा का इसी लीला है। ठीक है, द्राश्न भागवतम की श्री प्रभुपाद की।